आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज स्पेन के बार्सिलोना में सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर स्थलों का करेंगे भ्रमण। केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज वर्षा जारी। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना के लिए जारी किया रेड अलर्ट। और नर्मदापुरम जिले का 10 दिवसीय प्रसिद्ध नागद्वारी मेला पचमढ़ी में आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्पेन प्रवास के चौथे और अंतिम दिन आज बार्सिलोना के सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर स्थलों का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री प्रसिद्ध पार्क साग्रादा फैमिलिया चर्च और बार्सिलोना के विश्व प्रसिद्ध पिकासो संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। भ्रमण न केवल सांस्कृतिक समृद्धि में अनुभव होगा बल्कि मध्य प्रदेश में रचनात्मक उद्योगों और कला से जुड़े क्षेत्रों में संभावनाओं की खोज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज ही बार्सिलोना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके पहले कल मध्यप्रदेश सरकार और वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज एसएल के बीच डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता हुआ। मुख्यमंत्री ने बार्सिलोना में विश्व के अग्रणी कंपनियों के शीर्ष पदाधिकारियों से वन टू वन मुलाकात कर प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार के नए अवसरों को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीय समुदाय से संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है।
आज की स्थिति में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद रहे हैं हम अपने किसानों के लिए। ये 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का हमने बढ़ावा दिया और आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा फसल उत्पादन करने में पंजाब के बराबरी में अगर कोई काम कर रहा है कोई राज्य तो मध्य प्रदेश से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी तेजी से हमने न केवल फसल के सेक्टर सभी सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़े।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के पहले परिसर का उद्घाटन किया। एनएफडीसी कॉम्प्लेक्स में हुए समारोह में वेव्स 2025 भारत मंडप का भी औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के पहले आयोजन की परिणाम रिपोर्ट भी जारी की गई। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का सपना रचनात्मक तकनीक के क्षेत्र में आईआईटी और आईआईएम के स्तर का एक संस्थान स्थापित करना था और आईआईसीटी की स्थापना इस दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है।
टेक्नोलॉजी आज के क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है उसमें बहुत जरूरी है कि हमारे क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं उन सबको हम नए स्किल्स दें और दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है उसको हम अपने यहाँ पर लेके आए और यहाँ से नए इंक्यूबेशन, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज भी भारत से बने। उसी भावना के साथ, उसी उद्देश्य के साथ आईआईसीटी की कल्पना की गई।
सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुगम कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून अधिवेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित कराए जाने की उम्मीद है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि खेल प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रत्येक दिन टैलेंट सर्च के संकल्प के साथ कार्य किया जाए जिससे प्रदेश के लगभग 9 करोड़ जनसंख्या में से कम 50 लाख युवाओं की खेल प्रतिभा को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। श्री सारंग कल भोपाल में आयोजित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों तथा युवा समन्वयकों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। धार जिला मुख्यालय पर कल तंबाकू मुक्त शिक्षक तंबाकू मुक्त समाज को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला और उपलब्धि प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग, सामाजिक संस्था हिलिस मुंबई और हार्वर्ड बोस्टन यूएसए द्वारा तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने को लेकर जिले के 130 स्कूलों में 2 साल से चलाए जा रहे अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इनमें स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षक के साथ स्वास्थ्य संस्थाओं के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को लेकर नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम धार के डॉक्टर संजय भंडारी ने जानकारी दी।
इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं को तंबाकू मुक्त किया जा रहा है। सेमिनेशन कार्यक्रम यहाँ पे था, जहाँ पे 130 विद्यालयों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और इनका जो टैगलाइन था संस्था का, तंबाकू मुक्त शिक्षक तंबाकू मुक्त समाज, ये बहुत ही अच्छी तरीके से उभर के आया और हम कहीं न कहीं समाज को तंबाकू मुक्त करते जा रहे हैं।
प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज वर्षा जारी है। छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। छतरपुर जिले में एक दिन में 12 इंच बारिश दर्ज की गई। जिले के कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद गांवों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने 4 जिलों ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों समेत 10 जिलों में अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने अन्य जिलों में भी वर्षा की शंका जताई है। इसी बीच शिवपुरी जिले में लगातार बारिश का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटे से जिले में जोरदार बारिश है। इसके कारण सिंध नदी में पानी बढ़ने के बाद ये उफान पर आ गई, जिसके बाद अटल सागर मढ़ीखेड़ा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। जिले में आज सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। नर्मदापुरम जिले का प्रसिद्ध नागद्वारी मेला पचमढ़ी में आज से शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाले मेले का 29 जुलाई को समापन होगा। नागद्वारी गुफा मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए देश भर से 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं के यहां आने की संभावना है। मेले के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस बल के साथ साथ होमगार्ड की टीम, स्वास्थ्य विभाग का अमला, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम निरंतर मॉनिटरिंग के लिए मौजूद रहेगी। इस संबंध में कल कलेक्टर सोनिया मीना ने समीक्षा बैठक का निर्देश जारी किए हैं। भारतीय महिला पहलवानों ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलाक इमरी और वर्गा जानोस मेमोरियल प्रतियोगिता में कल 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते। ओलंपियन अंतिम बंगाल ने 53 किलोग्राम फाइनल में रूस की नतालिया मालिशेवा को 7-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। हर्षिता ने 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए 2रा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अंतिम दौर में 4 बार के एशियाई चैंपियन कजाकिस्तान की झामिला बाकब ग्रेनोवा को 10-0 से हराया। इसके अलावा नेहा सांगवान ने रजत और नीलम ने कांस्य पदक जीता। भारत के कुल पदकों की संख्या 6 हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ के भोपाल कार्यालय द्वारा कल अन्वेषा 2.0 नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। एनएसएस की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिवपुरी में कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र ठाकुरपुरा नोहरी झिगुरा में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। आगरमालवा में प्राकृतिक खेती उत्पादों के क्रय विक्रय के लिए प्राकृतिक हाट बाजार का शुभारंभ आज सुबह जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में किया जाएगा। संभागायुक्त की ओर से आदिवासियों की जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के संबंध में शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त होने के बाद खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जांच दल गठित किया है। डिंडौरी में कलेक्टर नेहा मारव्या के मार्गदर्शन में जिले में संचालित पेट्रोल पंपों की जांच हेतु गठित टीम द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक जिले के 7 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया जा चुका है। मंडला कलेक्टर सुमेश मिश्रा ने कल जिला चिकित्सालय में ऑडियोमेट्री मशीन का शुभारंभ किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।